रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद के सूरह जुहा की तिलावत और अनुवाद से करेंगे। कारी हैं हाशिम रोगनी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل و دیاوان ہے۔ سوگند ہے دن کی جب وہ چھا جائے اور رات کی جب اس کا سناٹا چھا جائے، اور ہے پیغمبر، آپ کے پالنہار نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے اپرسن ہوا ہے، اور نشچے ہی پرلے آپ کے لیے سنسار سے اتم ہے، اور شیگر ہی آپ کا پالنہار آپ کو اتنا پردان کرے گا کہ آپ پرسن ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو اناتھ پایا اور شرن نہیں دی، اور آپ کو مارگ سے دور پایا تو گنتویہ تک نہیں پہنچایا، اور آپ کو نردھن پایا تو سمردھ نہیں کر دیا؟ اتہ اناتھ پر کرودھ نہ کیجئے اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیے، تتھا اپنے پالنہار کی انوکمپا کا ورنن کرتے رہیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ دوستو، آپ ہمارے پرسارن کو شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.ir/hi۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 00989035065492۔ دوستو، آج شنیوار ہے، مرداد کی 14 اور اگست کی 5 تاریخ ہے۔ ساتھ ہی آج اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے محرم کی 18 تاریخ ہے۔ آج کی ہماری سبھا کے کاریکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ خبر سنیں گے، اس کے بعد آپ کی سیوا میں پیش کیا جائے گا کاریکرم راجنیتک چرچا، اور اس کے بعد جو کاریکرم آپ کی سیوا میں پیش کیا جائے گا وہ ہے اچھی عادتیں، اور اس کے بعد آج کی سبھا کے انت میں آپ کی سیوا میں جو کاریکرم پیش کیا جائے گا وہ ہوگا ایرانی وینجن۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گرراج ایران کی آواز۔ تو دوستو، کاریکرم کے انوسار اب آپ ریڈیو ہندی تہران سے راشٹری اور انتراشٹری سماچار روش زیدی سے سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کی اصل طاقت کا اندازہ لگانا ناممکن، جنرل سلامی کے بیان نے دشمنوں کے خیموں میں مچائی کھلبلی۔ اسرائیلی حملے میں دو فلسطینی شہید، زیونیوں اور حماس نے الرٹ رہنے کا کیا اعلان۔ عمران خان گئے جیل، 5 سال تک نہیں لڑ سکیں گے چناؤ، پاکستان میں ہائی الرٹ جاری۔ بھارت پر شاست کشمیر میں بھیشن مڈ بھیڑ، بھارتی سینا کے 3 جوانوں کی موت۔ اب آپ خبروں کو وسطار سے سنیں۔ اسلامی گڑراج ایران کی پاسداران انقلاب فورس کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ایران کی اصلی طاقت تو ابھی تک کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ادرش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے پرتبندوں کے بعد بھی ایران کو شکتیشالی بننے سے کوئی نہیں روک پایا۔ پراپ رپورٹ کے مطابق اسلامی گڑراج ایران کی پاسداران انقلاب فورس IRGC کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے شنیوار کو IRGC کی نوسینا دوارا کیے گئے سینکڑوں کی سنکھیا میں رونیتک سسٹموں اور اپکرنوں کے اناوروں کے موقع پہ دیے اپنے بیان میں کہا کہ ایک اور دشمن ہم پر لگاتار پرتیبند لگا رہا ہے، وہیں دوسری اور ہم ان پرتیبندوں کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے وکاس کی نئی نئی اونچائیوں کو چھوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی اصلی طاقت کو تو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری مکھ شکتیاں تو ادرش ہیں۔ جنرل سلامی نے کہا کہ ایرانی راشٹر اپنے دھڑ سنکلپ، کڑی محنت اور اپنے بل پر طاقتور بنا ہے۔ IRGC کے کمانڈر ان چیف نے IRGC کی نوسینا کے پرمکھ جنرل ایڈمرل علی رضا تنگسیری اور ان ادھیکاریوں کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ ایرانی راشٹر نے وشو میں موجودہ انیائپورن ویوستھا کے پرتی جاگروک ہو کر مضبوط بننے کا راستہ کھوج لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سمان جنک جیون کے لیے سنگھرش کرتے ہوئے جہاد میں اپنی وجے کو لے کر پوری طرح آشوست ہیں۔ IRGC کے کمانڈر ان چیف پرمکھ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہم دشمنوں کی پہچان کر ان کا مقابلہ کر کے آگے بڑھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج جو ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں وہ دشکوں کے سنگھرش کا نتیجہ ہے، دشکوں تک ہم نے خطروں کا سامنا کیا ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ ہمارے دشمن ہی ہمارے وکاس کا کارن بنے ہیں، اور آج ہم شکتیشالی بننے کا راستہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ جنرل سلامی نے شیتر میں دشمنوں کی پرتیکش اپستھتی کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے دشمنوں کی دشمنی نے ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کیا، اور پھر ہمیں یہ اوسر ملا کہ ہم اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو دشمن کی طاقت کے انوسار تیار کریں، اور یہی کارن ہے کہ آج ایران دنیا کے شکتیشالی دیشوں میں گنا جاتا ہے۔ اسلامی گڑراج ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ یان نے کہا کہ ایران اور پاکستان نے آپسی ویاپار سالانہ 5 ارب ڈالر کے استر پر لے جانے کا لکش نردھارت کر لیا ہے۔ حسین امیر عبداللہ یان جو پاکستان کی یاترا پر گئے تھے اپنے سمکش بلاول بھٹو زرداری سے بات چیت کے بعد شکروار کی شام تہران لوٹ آئے۔ یہ یاترا مہتوپورن ہے جس میں ودیش منتری نے پاکستان کے ورشٹھ ادھیکاریوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ یاترا سے واپسی پر حسین امیر عبداللہ یان نے انسٹاگرام پر لکھا کہ یہ یاترا دونوں دیشوں کے بیچ پچھلے سمجھوتے کو عملی جامہ پہنانے کی پرکریا کو گتی دینے اور نئے شتیج کھولنے کے ادیش سے تھی۔ انہوں نے آگے لکھا کہ پچھلے 20 مہینوں میں دونوں دیشوں کے بیچ ویاپارک لین دین میں اچھی بڑھوتری دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن اب ہمیں اس ویاپار کو 5 ارب ڈالر کی سطح پر لے جانا ہے۔ دونوں دیشوں نے 5 سال کے ویاپارک سہیوگ کے رڑنیتک کارکرم سے سمبندھت دستاویز پر دستخط بھی کیے ہیں۔ چرمپنتی زیونیوں کے حملے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ گھٹنا شکروار کو ہوئی۔ فلسطینی سنگٹھن حماس نے فلسطینیوں کا آہوان کیا ہے کہ وہ چرمپنتی حملہور زیونیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسرائیلی سینکوں کے حملوں کے ساتھ ہی چرمپنتی زیونی بھی فلسطینیوں پر بار بار حملے کر رہے ہیں اور ان کے پاس اسرائیلی سینا کی اور سے اپلبدھ کرائے گئے ہتھیار ہیں۔ زیونیوں کی ایک حرکت اور بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ حماس سنگٹھن نے فلسطینیوں کا آہوان کیا ہے کہ وہ زیونیوں کے حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ سنگٹھن نے کہا ہے کہ زیونیوں پر انکش لگانے کے لیے ہر اپلبدھ سادھن کا پریوگ کریں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ایکتا کو مضبوط کریں اور زیونیوں کے حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ زیونیوں کے حملے میں رام اللہ اور تلکرب میں 18 اور 19 سال کے 2 فلسطینی یوا شہید ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے جدہ شہر میں آج یوکرین یدھ پر انتراشٹریہ بیٹھک کا آیوجن ہو رہا ہے۔ وہیں روس کے ودیش منتری نے پشچمی دیشوں کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ وہ شانتی کے زیلنسکی ورژن کو تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے میڈیا کا کہنا ہے کہ اس بیٹھک کا مقصد یوکرین سنکٹ کو راجنیتک اور کوٹنیتک مارگوں سے حل کرنے کے لیے وچاروں اور نظریوں کو قریب لانا ہے۔ یوکرین کے راشٹرپتی ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ جدہ بیٹھک میں الگ الگ مہادیپوں کے پرتندھی بھاگ لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بیٹھک مہتوپورن ہوگی کیونکہ افریقہ اور ایشیا میں کروڑوں لوگوں کے بھوش پر شانتی پرکریا کا اثر پڑے گا۔ وہیں روس کے ودیش منتری سرگئی لاروف نے کہا کہ پشچمی آکاؤں کو چاہیے کہ وہ یوکرین کے راشٹرپتی پر دباؤ ڈالیں کہ وہ یوکرین میں بسنے والے روسی مول کے لوگوں اور ان الپ سنکھکوں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اسے بیان کریں۔ روس کے ودیش منتری نے کہا کہ یوکرین میں نیائے سنگت اور استھائی شانتی کے لیے جو بھی کوششیں کی جائیں گی ہم اس کا سمان کریں گے۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے روس کے ودیش منترالے سے کہا ہے کہ بیٹھک کے پریناموں کے بارے میں اسے سوچت کیا جائے گا۔ یہ بیٹھک 2 دن چلے گی جس میں 40 سے 50 دیشوں کے پرتندھی بھاگ لیں گے، جبکہ سب سے پرمکھ پکش یعنی روس اس میں شامل نہیں ہوگا۔ پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان توشہ خانہ معاملے میں دوشی ٹھہرائے گئے ہیں۔ اسلام آباد کی ضلع ایوم سطر عدالت نے عمران خان کو 3 سال جیل کی سزا سنائی ہے۔ اس سزا کے خلاف عمران خان کے پاس اوپری عدالتوں میں اپیل کرنے کا موقع ہے۔ عمران خان کے وکیل سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ توشہ خانہ معاملے میں دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد ٹرائل کورٹ کے جج نے پورو پی ایم عمران خان کے خلاف جاری گرفتاری وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ اس آدیش کے بعد عمران خان کو لاہور کے زمان پارک والے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں لاہور سے اسلام آباد لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ 3 سال کی سزا ہونے کے بعد عمران خان 5 سال کے لیے چناؤ لڑنے سے آیوگ بھی ہو گئے ہیں۔ غور طلب ہے کہ عمران خان پر 2018 سے 2022 کے دوران پردھان منتری پد کا دروپیوگ کر سرکاری اپہاروں کو خریدنے اور بیچنے کے لیے اپنی شکتی کا استعمال کرنے کا آروپ आरोप लगाया गया था। ये उपहार इमरान खान को विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे और जिनकी कीमत 140 मिलियन यानी 6,35,000 डॉलर से अधिक थी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी माना। हालांकि इमरान खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश दिलावर हुमायूं पर हमले पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगा दिया था। ऐसे में पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन के साथ पिछले करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहे रूस ने इस महायुद्ध के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। रूस ने साल 2023 के लिए अपने रक्षा खर्च को संशोधित करके उसे दुगना कर दिया है। अब रूस का रक्षा खर्च 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये उसके कुल सार्वजनिक खर्च का एक तिहाई है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बड़े फैसले में रूस का रक्षा बजट दोगुना कर दिया है। रूस ने यह खर्च ऐसे समय पर बढ़ाया है जब यूक्रेन युद्ध में खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे रूस की वित्तीय सेहत पर काफी असर पड़ा है। वहीं रूस के इस ऐलान से नाटो देशों की टेंशन बढ़ गई है। साल 2023 के पहले 6 महीने में रूस ने मूल रक्षा के मुकाबले 12% ज्यादा रक्षा पर खर्च किया है। रूसी सरकार की योजना है कि कुल फंड का 17.1% नेशनल डिफेंस के लिए खर्च किया जाए। युद्ध में बढ़ते खर्च ने रूस की अर्थव्यवस्था को गति दिया और औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा है। हालांकि निर्यात कम होने की वजह से रूस का बजट घाटा बढ़कर 28 अरब डॉलर हो गया है। भारत में जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार शाम को अलगाववादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सेना के 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। मीडिया ने पहले खबर आई कि सेना ने हथियारों से लैस छापामारों को कुलगाम के इलाके में घेर लिया और मुकाबला चल रहा है और सेना ने मामले पर काबू पर पा लिया है, लेकिन फिर 3 जवानों के घायल होने की खबर आई और उसके बाद उनकी मौत की सूचनाएं सामने आ गईं। अधिकारियों के मुताबिक कुलगाम के हल्लन मजगाम जंगल में 3 छापामारों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान छापामारों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जम्मू व कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और हिंसक घटनाएं थोड़े थोड़े अंतराल से होती रहती हैं। राजौरी में 5 मई को छापामारों के साथ इनकाउंटर में 5 जवान मारे गए थे। पुंछ जिले में 20 अप्रैल को सेना के ट्रक पर अलगाववादी छापामारों की फायरिंग की घटना में ट्रक में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 5 जवानों की मौत हो गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित देव ने शुक्रवार को नागपुर कोर्ट में अचानक इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। वहां मौजूद एक वकील के अनुसार उन्होंने कहा कि वे अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध काम नहीं कर सकते हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित देव ने अचानक इस्तीफा देने के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग इस अदालत में मौजूद हैं, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने आपको डांटा क्योंकि मैं चाहता था कि आप में सुधार हो। मैं आप में किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि आप सभी मेरे लिए परिवार की तरह हैं और मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और मैं अपने स्वाभिमान के विरुद्ध काम नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त होते हैं।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान की बढ़ती सैन्य शक्ति, यूक्रेन का रूस पर हमला और कश्मीरी धारा 370 की वापसी के इच्छुक, इन विषयों पर दोस्तों हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सिपाह पासदारान ने सैन्य अभ्यास में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। एक समीक्षा लेकर उपस्थित है मोहम्मद मेहदी।
ईरान की नौसेना ने नए रक्षा हथियारों व संसाधनों का अनावरण किया है। ईरान की नौसेना ने जिन मिसाइलों, ड्रोनों और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का अनावरण किया है, उन सब का निर्माण देश के रक्षा उद्योग में ईरानी वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से किया गया है। अभी सिपाही पासदारान IRGC ईरान के बू मूसा द्वीप में जो नए सैनिक अभ्यास किया है, उसमें कुछ नए रक्षा हथियारों का परीक्षण किया गया है। ईरान की नौसेना के पास इस समय 300 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल हैं, जिससे नौसेना की ताकत में काफी वृद्धि हो गई है। अभी सिपाही पासदारान IRGC ने बू मूसा द्वीप में जो सैनिक अभ्यास किया है, उसमें पहली बार क्रूज मिसाइल कदीर और बैलिस्टिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया गया। सिपाह पासदारान ने जिन रक्षा संसाधनों व हथियारों का अनावरण किया है, वे इस बात के सूचक हैं कि ईरान रक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान योग्य प्रगति कर रहा है। साथ ही इस प्रगति ने दर्शा दिया कि तेहरान के खिलाफ प्रतिबंध और दुश्मनों के दबाव ईरान के प्रगति के मार्ग की बाधा नहीं बन सके हैं। रोचक बात यह है कि न केवल रक्षा बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में ईरान ध्यान योग्य प्रगति कर रहा है और ईरान की प्रगति को रोकने के लिए दुश्मन विभिन्न बहानों व निराधार आरोपों के माध्यम से तेहरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाते हैं और इन प्रतिबंधों का सबसे मुख्य लक्ष्य ईरान को प्रगति करने से रोकना है। परंतु नैनो और परमाणु तकनीक जैसे जटिल क्षेत्रों में ईरान की उल्लेखनीय प्रगति ने दुश्मनों को हतप्रभ कर रखा है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान को प्रगति करने से कैसे रोकें। ईरान को प्रगति करने से रोकने के लिए ही ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को शहीद किया गया, परंतु किसी भी क्षेत्र में ईरान की प्रगति नहीं रुकी है और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में वो आत्मनिर्भर हो चुका है। विभिन्न क्षेत्रों में ईरान की प्रगति का एक राज व कारण यह है कि वो देश के अंदर मौजूद संभावनाओं और देश के मेधावी व प्रतिभाशाली युवाओं की क्षमताओं से भरपूर लाभ उठा रहा है। इस प्रकार से कि रक्षा और खैर रक्षा क्षेत्र की बहुत सी जरूरतों का निर्माण देश के भीतर किया जा रहा है और अमेरिका और दुश्मनों के एकपक्षीय प्रतिबंधों से उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये उस स्थिति में है जब ईरान को इस्लामी क्रांति की सफलता के आरंभ से ही प्रतिबंधों का सामना है और हालिया वर्षों में उसे कड़ा से कड़ा बना दिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचकर ईरान के खिलाफ कड़े से कड़े प्रतिबंध की नीति अपनाई थी कि ईरान इन प्रतिबंधों के सामने घुटने टेक देगा और वाशिंगटन की वर्चस्ववादी व अतार्किक मांगों को मान लेगा, परंतु कई वर्षों का समय बीत गया और ट्रंप की सत्ता से विदाई भी हो गई, मगर ईरान वाशिंगटन की वर्चस्ववादी नीतियों के समक्ष नहीं झुका। जानकार हलकों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ईरान के खिलाफ कड़ा से कड़ा प्रतिबंध लगाने से पहले ईरानी इतिहास का थोड़ा सा अध्ययन कर लिया होता तो वे कभी भी ईरान के संबंध में इस प्रकार की विफल नीति न अपनाते। इस प्रकार से कि आज अमेरिकी अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि तेहरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति विफल रही है और उसका कोई परिणाम नहीं निकला है।
यूक्रेन की सेना ने दो ड्रोन नौकाओं के माध्यम से रूसी समुद्री छावनी पर हमला किया। विस्तार से बता रहे हैं अहमद अब्बास।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कर्च स्ट्रेट और खोरेस के इलाके पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं। नोवोर सीएस्क समुद्री इलाके के बचाव कार्य समन्वय केंद्र ने शनिवार की सुबह बताया कि कर्च स्ट्रेट में रूस के एक तेल टैंकर पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर दिया, जिससे टैंकर के इंजन को नुकसान पहुंचा। टैंकर पर रूस का ध्वज था। हमले में स्टाफ के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। बुधवार को भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया था कि कर्च स्ट्रेट में हर प्रकार की आवाजाही और सारी गतिविधियों को सीमित कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन का अनाज अन्य देशों को निर्यात करने के समझौते से निकलने का ऐलान करने के बाद कहा था कि काला सागर के पश्चिमोत्तरी और दक्षिण पूर्वी इलाकों को असुरक्षित घोषित किया जाता है और यूक्रेन की बंदरगाह की ओर जाने वाले जहाजों को यूक्रेन का समर्थक माना जाएगा। इस बीच रिल्स्क शहर के गवर्नर ने बताया कि यूक्रेन ने रूस के कोरेस्क इलाके पर ड्रोन विमान से हमला किया, मगर इसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उनका कहना था इस हमले में एक गिरजाघर और दो सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। रूस ने यह भी कहा है कि गुरुवार को यूक्रेन की सेना ने दो ड्रोन नौकाओं के माध्यम से रूस की एक समुद्री छावनी पर हमला किया था, मगर इस हमले को रूसी डिस्ट्रॉयर ने नाकाम बना दिया। इसके बाद शुक्रवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गत जून महीने में यूक्रेन ने जो हमला शुरू किया उसमें अब तक यूक्रेन के 43,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। मंत्रालय का कहना था कि इसके अलावा बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें बहुत से सैनिकों को इलाज के लिए विदेश भेजा गया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि रूसी सेनाएं यूक्रेन की सेना के हथियारों को भी निशाना बना रही हैं ताकि यूक्रेन हमले करने में सक्षम न रहे। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने इंटरनेशनल अफेयर्स को साक्षात्कार देते हुए कहा कि हम यूक्रेन में शांति की स्थापना के लिए की जाने वाली कोशिशों का स्वागत करते हैं। उन्होंने इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की शांति योजना को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि इसे यूक्रेन में बसने वाले करोड़ों रूसी मूल के लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि कीव ने खुलकर उनके दमन की धमकी दी है। इस बीच यूरोपीय संसद के सदस्य मैक वालास ने सीएनएन के साथ सर्वे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमरीका ने यूरोप और नेटो के साथ मिलकर यूक्रेन की बर्बादी के लिए बहुत कोशिशें की हैं। सर्वे में 51% से अधिक लोगों ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए काफी कुछ दे दिया है। सर्वे में भाग लेने वालों में 2/3 लोगों का कहना था कि ये जंग दूसरे इलाकों में फैल सकती है। वालास इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन की जंग को रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे केवल पश्चिमी देशों को फायदा हो रहा है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। कश्मीरी जनता ये चाहती है कि धारा 370 को वापस कर दिया जाए। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
भारत प्रशासित कश्मीर में आज जहां सत्ताधारी दल भाजपा ने 5 अगस्त 2019 के उस निर्णय जिसमें जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था के पक्ष में जश्न की सभा आयोजित की और इसे बड़ी उपलब्धि घोषित किया, वहीं पर जम्मू कश्मीर यूटी के अन्य मेनस्ट्रीम दलों जिनमें पीडीपी खासकर शामिल हैं के प्रोग्रामों को असफल बनाने के लिए पुलिस ने उन पर क्रैकडाउन किया और महबूबा मुफ्ती सहित दर्जनों लोगों को पुलिस थानों में गिरफ्तार करके रखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी पीडीपी के लोगों ने प्रदर्शन करने का प्रयास किया जो पुलिस ने असफल बना दिया।
370 वापस करो,
वापस करो, वापस करो,
370 वापस करो,
वापस करो, वापस करो।
धोखाधड़ी नहीं चलेगी,
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,
धोखाधड़ी नहीं चलेगी,
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,
370 वापस करो,
वापस करो, वापस करो।
भाजपा ने श्रीनगर में एक सभा के बीच लोग कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में शांति लौट आई है और लोग खुशहाल हो रहे हैं क्योंकि लोग जम्मू कश्मीर की तमीर तरक्की के खाहा हैं, और उन्होंने इस अवसर पर कहा। इधर आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदर्शन करने का प्रयास किया जो पुलिस ने असफल बना दिया। इस अवसर पर एनसी की ओर से लगाए गए काले झंडे भी पुलिस ने उतार दिए। इस बीच माननीय पत्रकार ने इन घटनाओं के हवाले से अपनी प्रक्रिया प्रकट करते हुए कहा,
एबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में आते ही पहले पार्लियामेंट सेशन में, दूसरी बार जब मोदी जी की सरकार आई तो पहले ही सेशन में इस आर्टिकल 370 को खत्म किया। ठीक बात है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जोरे गैर है। 5 जजों की कमेटी, 5 जजों की टीम इसको सुन रही है। हमारे सभी यहां के नेता परसों गए थे वहां, और सिब्बल साहब को हमारे चीफ जस्टिस ने किस प्रकार से ये कहा कि क्या ये आर्टिकल पार्लियामेंट खत्म नहीं कर सकती है, कि ये मुझे बताइए। पार्लियामेंट को ये अधिकार है इस आर्टिकल को खत्म कर सके।
इस बीच आज प्रशासन ने एहतियाती तदाबीर के अनुसार सालाना अमरनाथ यात्रा को भी एक दिन के लिए सस्पेंड कर रखा है। इस बीच दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में अलगाववादी छापामारों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ में तीन सुरक्षाकर्मी अभी तक हताहत हुए हैं जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, परंतु बताया जाता है कि उनकी स्थिति भी इंतहाई नाजुक है। घटनास्थल से अलगाववादी छापामार भाग निकलने में भी सफल हुए हैं। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, हमारे साथी कायम रिज़वी की जबानी। अब इस वक्त जो आपकी सेवा में कार्यक्रम पेश किया जा रहा है वो है अच्छी आदतें, तो चलिए साथ में मिलकर सुनते हैं।
अच्छी आदतें।
दोस्तों, कार्यक्रम अच्छी आदतें की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने संचार कौशल के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा था कि जिस तरह से सुनना और सहानुभूति जाहिर करना संचार कौशल है, उसी तरह से लिखना भी एक संचार कौशल है, और इसे दूसरों से संपर्क स्थापित करने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कौशल या महारत को संपर्क स्थापित करने और संदेश पहुंचाने के एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिन परिस्थितियों में आप सीधे तौर पर संपर्क नहीं कर सकते, वहां आप इस महारत के जरिए अपना संदेश स्थानांतरित कर सकते हैं। इस कौशल का अभाव विचारों के आदान प्रदान को काफी हद तक सीमित कर देता है। लिखने का कौशल सही बात करने और सही सोचने में भी आपकी मदद करता है।
लेखन के माध्यम से संचार नॉन वर्बल संचार का एक बहुत ही सीमित भाग है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन में आप शब्दों, कला और ग्राफिक के जरिए अपनी बात पहुंचाते हैं, इसलिए परंपरागत ग्रंथों में लिखित विधि का प्रयोग अधिक सफल होता है। कार्यालयों और आधिकारिक केंद्रों में राइटिंग कम्युनिकेशन एक सामान्य बात है। राइटिंग स्किल्स का इंसान की दूसरी स्किल्स पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अगर आप इस महारत में कमज़ोर हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास और ट्रेनिंग से आप इस महारत को निखार सकते हैं।
इस महारत को निखारने के लिए सबसे पहले आप राइटिंग की तकनीक और नियमों की जानकारी हासिल करें और उन गलतियों से बचें जो आपकी राइटिंग को गैर पेशेवराना बनाती हैं। इसके लिए आपको उस भाषा के ग्रामर और ढांचे का सही ज्ञान प्राप्त करना होगा जिसमें आप लिखने जा रहे हैं। इसी तरह से जो चीज आप लिखने जा रहे हैं उसके बारे में पहले अच्छी तरह से विचार कर लें और उसके लिए पहले एक रोड मैप तैयार कर लें। आप सबसे पहले ये तय कीजिए कि जो कुछ भी आप लिखने जा रहे हैं उससे आपका उद्देश्य क्या है और आपका संबोधक कौन है।
अगर आप अच्छा लेख या संदेश लिखना चाह रहे हैं तो जितना संभव हो सके ऐसी चीज़ों और कार्यों से बचें जो आपका ध्यान भटका सकते हैं। जहां लिख रहे हैं वहां का वातावरण लेखन के लिए उचित होना चाहिए। आपके लेखन का एक उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। लेख के अंत में अस्पष्ट जुमले और सवाल लिखने से बचें। लेख पूरा होने के बाद उसे एक बार पूरा जरूर पढ़ें। स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को जरूर सही कर लें।
एक दूसरी महारत जो लोगों से जुड़ने और संपर्क करने में बहुत काम आती है वो है संयम रखना। संयम या अपने ऊपर काबू रखना एक सीखने वाली महारत है जो इंसान को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और जल्दबाजी नहीं करना सिखाती है। संयम के इंसान के व्यक्तित्व पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि आत्मविश्वास बढ़ता है, मिजाज में नरमी पैदा होती है और इंसान विरोधी विचारों का सम्मान करना सीखता है। इसका एक नतीजा लोगों को क्षमा कर देना है, जिससे दोस्ती और रिश्ते मजबूत होते हैं। जिस व्यक्ति में संयम नहीं होगा वो लोगों को क्षमा नहीं कर सकेगा।
संयम और विनम्रता के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन में खुशहाली पैदा होती है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कहना है, जो संयम रखता है वो अपने काम में अति नहीं करता है और वो लोगों के बीच लोकप्रिय जीवन व्यतीत करता है। संयम एक मानवीय गुण है जिसे इंसान हर उस काम को करने से बचता है जिसका नतीजा खतरनाक होता है और उससे उसे या दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे इंसान में आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि जो लोग संयम रखते हैं आमतौर पर वो आत्मविश्वास भी रखते हैं।
संयम का इंसान पर काफी अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो अपनी गलती को तुरंत भांप लेता है और उसमें सुधार का प्रयास करने लगता है। बचपन से इस आदत को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग बचपन से ही इसे सीखते हैं वो अपनी इच्छाओं पर सही ढंग से नियंत्रण कर सकते हैं। जो इंसान इस आदत को अपना लेता है और अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करता है उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं कि जो दूसरी विशेषताओं से अलग होती हैं। ऐसे लोग स्वयं के प्रति अच्छा एहसास रखते हैं और उनमें अधिक आत्मविश्वास पाया जाता है। ऐसे लोग विभिन्न परिस्थितियों में लचीला व्यवहार करते हैं। समस्याओं और कठिनाइयों का सामना होने पर वे मानसिक दबाव में नहीं आते। आत्मनियंत्रित लोगों में उच्च सहानुभूति होती है और वे कठिन परिस्थितियों में दूसरों की मदद कर सकते हैं।
जैसा कि उल्लेख किया गया है कि संयम को एक पुख्ता आदत में बदलने के लिए इसे बचपन से सीखना और सिखाना बेहतर है। माता पिता अपने बच्चों को संयम या आत्मनियंत्रण सिखाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ तकनीकों का उपयोग करके इस कौशल को मजबूत किया जा सकता है। आत्मनियंत्रण सिखाने के लिए पहला कदम, माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के लिए अच्छा रोल मॉडल बने। बच्चे हमेशा अपने माता पिता को देखते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, इसलिए माता पिता के लिए बेहतर होगा कि वे अपने आत्मनियंत्रण कौशल को मजबूत करें और विपरीत परिस्थितियों में भी संयम रखें।
बच्चों को सीमितताओं को पहचानना चाहिए और माँ बाप की तरफ से ना सुनने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें ये सीखना चाहिए कि कुछ परिस्थितियों में अपनी इच्छाओं पर काबू रखें और उन्हें त्यागना सीखें। नहीं सुनने की शुरुआत छोटी छोटी बातों से हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा अधिक मात्रा में चॉकलेट खाना चाहता है तो उसे रोकें। बच्चों के लिए चॉकलेट खाना या टीवी देखना जैसी गतिविधियों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस कौशल को मजबूत करने के लिए माता पिता बच्चों को पुरस्कृत कर सकते हैं। ये इनाम मौखिक भी हो सकता है। ये मुद्दा धीरे धीरे बच्चे के लिए एक नियम और आदर्श बन जाता है और वो किसी भी काम से खुद को रोकना और उसके बारे में सोचना सीख जाता है।
जैसा कि हमने बताया, इस महारत को निखारा जा सकता है। इसे निखारने के लिए सबसे पहले मजबूत संकल्प की जरूरत होती है। इसके अलावा इंसान को अपने कार्यों और व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए जो त्वरित संतुष्टि की ओर ले जाती हैं या भ्रम पैदा करती हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण के लिए इंसान को स्वयं को पुरस्कृत करना चाहिए। धैर्य रखना और सोचना, व्यायाम और वॉक, सकारात्मक वाक्यों को दोहराना और ध्यान इस कौशल को मजबूत करने के अन्य तरीके हैं।
बहुत से लोग अपनी इच्छाओं के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है कि इसका खुद उनके ऊपर और दूसरों पर बुरा असर पड़ सकता है या उसका उन्हें नुकसान हो सकता है। वे आदत से मजबूर होकर ऐसे काम करते हैं, जबकि हो सकता है कि उनका ऐसा करने का इरादा ना हो। हालांकि उसके बाद उनकी अंतरात्मा उन्हें कोसती है और वे गुनाह का एहसास करते हैं। इसलिए हमें संयम और आत्मनियंत्रण के कौशल को मजबूत करने और इसके अनगिनत लाभों से लाभान्वित होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कौशल को मजबूत और पुख्ता बनाने से गलतियों को जल्दी ठीक करना और उनकी भरपाई करना संभव हो जाता है और इससे सामाजिक न्याय का विस्तार भी होता है।
इस बात के इतर कि हम क्या करते हैं और क्या इरादा रखते हैं, वांछित परिणाम तक पहुंचने में संयम की भूमिका किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर हम जज्बात में बह जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से तर्क फीका पड़ जाता है और हम जो निर्णय करते हैं संभवतः वो रचनात्मक निर्णय नहीं होता है। एक प्रक्रिया के माध्यम से आत्मनियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में लक्ष्य और मानक निर्धारित करना, उपाय, स्वमूल्यांकन और स्वप्रबंधन शामिल हैं।
प्रत्येक व्यक्ति के अपने निर्धारित लक्ष्य होते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए उसे विशेष मानदंडों का पालन करना होता है। एक व्यक्ति जो खुद को नियंत्रित करना चाहता है और संयम से काम लेना चाहता है, उसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो किस दिशा में जाना चाहता है और अपनी वर्तमान स्थिति से किस वांछित स्थिति में जाने का इरादा रखता है। इस स्तर पर वो व्यक्ति खुद को कुछ कार्यों के लिए प्रतिबद्ध करता है जिन्हें वो वांछनीय समझता है।
आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया में दूसरा कदम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम उठाना है जो कोई व्यक्ति अपने लिए निर्धारित करता है। आत्मनियंत्रण प्रक्रिया में तीसरा चरण वांछित मानकों के आधार पर अपने लक्ष्यों और अपने प्रदर्शन के बीच समन्वय स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में, इस स्तर पर व्यक्ति अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है कि वो अपने लक्ष्यों और सपनों के किस हद तक निकट पहुंच चुका है या उन्हें प्राप्त कर सका है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अच्छी आदतें, और अब आज की सभा के अंत में आपकी सेवा में जो कार्यक्रम पेश किया जा रहा है वो है ईरानी व्यंजन। तो चलिए साथ में मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम ईरानी व्यंजन।
ईरानी व्यंजन।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरानी व्यंजन की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
आज के कार्यक्रम में हम आपको बीजार शहर की सैर पर ले चलेंगे। कुर्दिस्तान प्रांत का ये भी बहुत सुंदर शहर है। कार्यक्रम में हम आपको बीजार शहर के बारे में बताएंगे और साथ ही यहाँ के दो व्यंजनों से आपको परिचित करवाएंगे। शहर में बड़े आकर्षक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। इस शहर के हस्तकला उद्योग भी बहुत मशहूर हैं, हम इन सब के बारे में बात करेंगे।
इस समय हम बिजार शहर में हैं। सुंदर पर्वतीय शहर बिजार को बामे ईरान या ईरान की छत भी कहा जाता है। बिजार शहर समुद्र तल से 940 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बिजार की जलवायु शुष्क और ठंडी है। यह शहर 7000 साल पुराना है और यहाँ ढेरों ऐतिहासिक अवशेष और दर्शनीय स्थल हैं। मजे की बात यह है कि इस इलाके की रीति रिवाज भी बड़े रोचक हैं। बिजार शहर ईरान के उन शहरों में है जो अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। बिजार को चोटियों का गहवारा, प्राचीन टीलों का शहर, ये सारे शहर के नाम हैं। इसकी वजह यही है कि बिजार शहर के इर्द गिर्द बहुत से प्राचीन टीले हैं। इन टीलों में पुरातनविदों ने खोज और उत्खनन करके बहुत से प्राचीन अवशेष निकाले हैं। विशेषज्ञों के आंकलन के अनुसार 60 सदी के ऐतिहासिक अवशेष और इमारतें बिजार में हैं। इनमें से एक अवशेष तो ऐसा है जिसका संबंध 3000 वर्ष ईसा पूर्व से बताया जाता है। ये कमचकाय किला है जो बिजार का इतिहास बयान करता है। किले को माद और पार्थ जातियों के दौर में बनाया गया और सासानी बादशाह ने इसे स्ट्रेटेजिक शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया। इस इलाके के अन्य ऐतिहासिक अवशेषों में अश्कून बाब स्तंभ का नाम लिया जा सकता है जो ईंटों से बना है। यंगी अर्ख स्तंभ भी बहुत मशहूर है। इसी तरह सलवाताबाद पुल, सराब गुर्रीन टीला, खुसरोवाबाद क्रूस की मस्जिद और दूसरी बहुत सी इमारतों और अवशेषों का जिक्र किया जा सकता है।
पौष्टिक और स्वादिष्ट ईरानी खानों का परिचय। घर बैठे सीखिए लज्जतदार ईरानी खाने पकाने की विधि। कार्यक्रम श्रृंखला ईरानी व्यंजन में हर शनिवार को कार्यक्रम ईरानी व्यंजन।
कुर्दिस्तान के अन्य शहरों और गांवों की तरह बिजार की भी प्रकृति बड़ी मनमोहक है। इस शहर के प्राकृतिक सुंदरता वाले शहरों में बिजार का संरक्षित क्षेत्र है। ये इलाका बिजार के 15 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में स्थित है। यहाँ बड़ी सुंदर वनस्पति और आंखों को भली लगने वाली प्रकृति है। इस इलाके में कई नदियों और जल स्रोतें हैं। गजल, ओजन नदी और कमचाय नदी इस इलाके में है। इस संरक्षित इलाके में 30 अधिक स्तनधारी प्रजातियों के जानवर पाए जाते हैं। 140 प्रकार के पक्षी और 20 प्रकार के रेंगने वाले जानवर भी हैं।
कुर्दिस्तान के जिन इलाकों में सैलानियों की अच्छी खासी संख्या हर साल जाती है उनमें एक बिजार है। स्थानीय लोग भी सैलानियों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। पर्यटक और पर्यटन को आय का बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है।
बिजार शहर का एक आकर्षण यहाँ का पारंपरिक बाजार है। ये तो संभव नहीं है कि हम बिजार शहर की बात करें और वहाँ के पारंपरिक बाजार को भूल जाएं। ये बाजार जो इस शहर का दिल माना जाता है बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि इसका संबंध सफवी शासनकाल से है, यानी 500 साल से अधिक पहले इस बाजार का निर्माण हुआ। पहले विश्व युद्ध में इस पारंपरिक बाजार को बड़ा नुकसान पहुंचा। हालिया दशकों में इस बाजार की मरम्मत की गई। बिजार का पारंपरिक बाजार छत वाला बाजार है और इसके भीतर छोटे बड़े कमरे बने हुए हैं जिनमें दुकानें हैं। बहुत से लोग इस बाजार में जाकर अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। इस बाजार की दर्शनीय चीजों में एक यहाँ का हस्तकला उद्योग बाजार और हाथ के बुने कालीनों का बाजार है। इस बाजार में बिजार के खास कालीनों को देखा जा सकता है जो बिजार के कलाकारों के हाथों तैयार होते हैं।
दोस्तों आपके लिए ये जानना भी रोचक होगा कि बिजार ईरान में कालीन की बुनाई की कला में सबसे आगे रहने वाले इलाकों में गिना जाता है। कुर्दिस्तान के बहुत से प्राचीन कीमती कालीन जो अब देश के भीतर और बाहर संग्रहालयों में रखे हुए हैं बिजार के बुने हुए कालीन हैं। इस शहर में कालीन की बुनाई भी बहुत पुराने समय से प्रचलित है। बिजार के कालीनों की एक खासियत इनकी मोटाई है, इसलिए इन कालीनों को तय करना आसान नहीं होता। इसके अलावा बिजार के कालीनों के गुल बूतों की डिजाइनें और इसके रंग बहुत खास होते हैं।
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईरानी व्यंजन। हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि हम आपको बिजार शहर की यात्रा पर ले चलेंगे और यहाँ के लोगों के सुंदर व आकर्षक इतिहास और संस्कृति से अवगत करवाएंगे और साथ ही यहाँ के खानों के बारे में भी आपको बताएंगे। बिजार के मशहूर खानों में एक कंगर सुखारी है। हम आपको इस कुर्दी खाने के बारे में बताएंगे। इसको कायर में भी कहते हैं। ये बिजार ही नहीं कुर्दिस्तान के भी मशहूर पकवानों में है। ये बहुत हद तक फास्ट फूड से मिलता जुलता पकवान है। कंगर सुखारी को कुर्द लोग रोटी या चावल के साथ सर्व करते हैं।
कंगर दरअसल एक वनस्पति है जो खुद ब खुद उगने वाली वनस्पतियों में है। इसकी पत्तियों पर हल्के कांटे होते हैं और इसका तना थोड़ा मोटा होता है। बाहर और गर्मी के मौसम में ये वनस्पति खूब उगती है। कंगर से वैसे तो ज़्यादातर सूप बनाते हैं, दूसरे सालन में भी इसे डालते हैं और इस तरह इसे सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा शैली में कंगर के पत्तों को मूत्रवर्धक खासियत वाली औषधि माना जाता है। इसे किडनी और गॉल ब्लेडर को बहुत फायदा पहुंचता है। ये वनस्पति बड़ी पौष्टिक होती है, इसमें पोटेशियम होता है। कंगर को गर्म स्वभाव की वनस्पति माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा दही के साथ खाते हैं। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और लिवर के रोगी कंगर को इस्तेमाल करने से बचें तो बेहतर है।
कायर हमें को तैयार करने के लिए 1 किलो कंगर वनस्पति, 1 कप आटा, 3 अंडे, 1/2 कप दूध, 3 चम्मच मक्खन, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक, मिर्च, जीरा, 3 चम्मच केसर ले लीजिए।
पहले कंगर को साफ कर लीजिए और उसके पत्तियों के कांटे निकाल दीजिए। इसके बाद इन पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब आटा, नमक, मिर्च, जीरा और बेकिंग पाउडर को एक प्याले में रखकर अच्छी तरह मिला दीजिए।
अब मक्खन, अंडे, दूध, दम किया हुआ जाफरान एक बर्तन में डाल दीजिए और खूब अच्छी तरह चला दीजिए। इसके बाद आटा और उसमें जो चीजें मिलाई हैं उसे भी इसी में डाल दीजिए। इस तरह एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। अब कंगर के टुकड़ों को इस पेस्ट में डालिए और फिर निकालकर गर्म तेल में डालकर तलिए और सुनहरा हो जाने पर बाहर निकालिए। आपका कायर में तैयार हो गया।
दोस्तों, इसके भाग में हम आपको बिजार की एक देसी रोटी के बारे में बता रहे हैं। बड़ी स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर रोटी है, इसे बरसाक कहते हैं। ये देसी रोटी बिजार में तो प्रचलित है ही, साथ ही लोरिस्तान, किरमानशाह, ईलाम और हमदान में भी खूब चाव से खाई जाती है।
इस रोटी को पकाने के लिए 6 कप आटा, 1 अंडा, 1 कप तेल, 1 कप हल्का गर्म पानी, 3/4 गिलास शक्कर, 1 गिलास दही, 1 चम्मच नमक और बहुत थोड़ा सा वेनिला चाहिए। खमीर बनाने के लिए थोड़ी सी शक्कर और हल्का गर्म पानी ले लीजिए।
पहले खमीर तैयार कर लीजिए और उसे गर्म जगह पर रखिए कि खमीर उठ जाए। इसके बाद आटे को एक बड़े बर्तन में रखिए, उसमें नमक, शक्कर, अंडा, वैनिला, तेल और हल्का गर्म पानी और दही मिला दीजिए। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब खमीर को खूब अच्छी तरह गूंथ लीजिए ताकि वो पूरी तरह तैयार हो जाए और पूरा खमीर एक जैसे नजर आए।
अब एक प्याले में तेल लगा दीजिए और खमीर की लोई बनाकर उसके भीतर डालिए। अब प्याले का ढक्कन अच्छी तरह बंद करके किसी गर्म जगह थोड़ी देर रख दीजिए और देखिए कि खमीर का आकार दुगना हो गया है। अब इसे मेज पर या पटरे पर रखिए और गूंदिए ताकि उसके भीतर की हवा निकल जाए। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। इन पर अपनी इच्छा के अनुसार डिजाइन बना लीजिए। आखिर में कढ़ाई में तेल डालकर उसे आग पर चढ़ा दीजिए और इन गोलियों को उसमें तल लीजिए। आपका बरसात तैयार है, इसे आप परोस सकते हैं।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। तो अगली सभा तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔